आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार बच्चों, मैं हूँ दिव्यांगना द्विवेदी एंड वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी जिसका नाम है वायुमंडल और जलवायु। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। वी लेट विद क्वेश्चन आंसर्स और हमने एक बार चैप्टर का रिविजन भी कर लिया था लास्ट क्लास में। सो लेट स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है। तो अमेरिका में इसको क्या कहते हैं, हरिकेन कहा जाता है। तो ए विल बी द फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। बाकी जो है टॉर्नेडो, टाइफून और विली विलीज, ये अलग अलग जगह पर कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, वायुयान किस परत में उड़ते हैं। क समताप मंडल, ख शोभ मंडल, ग आयन मंडल, घ ब्रह्म मंडल। सो द राइट आंसर इज क समताप मंडल, क्योंकि यहां पर हमने जाना था कि कोई भी मौसमी छेड़छाड़ नहीं होती, यहां पर मौसमी हरकत नहीं होती है कोई भी, शांत, इसे शांत मंडल भी कहा जाता है, वहां पर वायुयान उड़ता है। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा डैश गैस की है। तो सबसे अधिक मात्रा किस चीज की है, नाइट्रोजन की है, ठीक है। चलिए नाउ कम सेकेंड, पवन की गति मापने का यंत्र डैश मीटर कहलाता है। इसका आंसर है एनिमोमीटर। हमने ऊपर एक पिक्चर में भी देखा था कि ये बना हुआ था उसमें। सो द राइट आंसर इज एनिमोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन डैश मंडल से होता है। इसका सही जवाब है आयन मंडल। चलिए अगला पढ़ते हैं, ग्रीष्मकाल में चलने वाली गर्म पवनों को राजस्थान में डैश कहा जाता है। तो जो गर्म हवाएं चलती हैं गर्मियों के टाइम पर, उसे हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। और ये जो हवाएं होती है इसमें मॉइस्चर नहीं होता, दीज आर ड्राई विंड्स, ड्राई एंड हॉट विंड। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि है, मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 13 पर अंडर द हेडिंग मौसम तथा जलवायु। किसी स्थान विशेष की आपातकालीन पर्यावरणीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। मौसम में कम समय में लगातार बदलाव होते रहते हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। जलवायु में भी परिवर्तन होता रहता है, लेकिन यह इतना धीमी गति से होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से इसे अनुभव नहीं कर पाते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमें दीर्घकाल के बाद दिखाई देता है। अब ये तो आंसर है ही, लेकिन इसमें जो अगला पॉइंट है, मौसम एवं जलवायु के तत्व, दिस विल ऑल्सो बी योर आंसर, तो हम इसे भी करेंगे। मतलब ये जो मैं पूरा ये वाला टॉपिक भी पढ़ूंगी, ये कंप्लीट आंसर होगा। सो लेट्स रीड। वायुमंडल के मुख्य तत्व तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, पवने आदि हैं। वायुमंडल के ये सभी तत्व हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। इनके बिना मानव, जीव जंतु और पेड़ पौधों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। एंड नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है, वर्षा कितने प्रकार की होती है नाम बताइए। और इसका आंसर हमें मिलेगा इन पेज नंबर 16, जिसमें टॉपिक है वर्षा। चलिए पढ़ते हैं इसे। वर्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो प्रतिवर्ष समुद्रों के खारे जल को मीठे जल में बदलकर हम तक पहुंचाता है। पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। अधिकतर भूमिगत जल भी वर्षा से ही प्राप्त होता है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है। वर्षा कम होने पर जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। अधिक वर्षा होने पर मैदानी भागों में पानी भर जाता है तो उस स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। वर्षा तीन प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, परवर्तीय वर्षा तथा चक्रवर्तीय वर्षा। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक भी इसमें इंक्लूड करेंगे, विश्व में वर्षा का वितरण। विश्व में सभी स्थानों पर वर्षा एक समान नहीं होती है, क्योंकि वर्षा का वितरण कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे पर्वतों की दिशा, समुद्र की दूरी, धरातल का स्वरूप, पवन आदि। विषुवत रेखीय क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मध्य वर्षा वाले क्षेत्र मुख्य रूप से उष्ण शीतोष्ण कटिबंध के तटीय क्षेत्र हैं, जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर रहती है। एक काम करिएगा, इसमें जो ये कितने प्रकार की वर्षा होती है ना, तो ये वर्षा जो ऊपर ब्लू वाला पैराग्राफ है ना, यहीं तक करिए, विश्व में वर्षा के वितरण से मत करिए, क्योंकि ये फिर आंसर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और ये लॉजिकली करेक्ट भी नहीं होगा। सो लीव दैट पार्ट, इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए। चलिए अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आता है, पवन का अर्थ बताते हुए इसके प्रकार को समझाइए। चलिए तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 15 पर अंडर द हेडिंग पवन। आप पवन को प्रतिदिन महसूस करते हैं। आपने सूखते कपड़ों को अपने आप हिलते हुए देखा होगा, यह पवन के कारण ही होता है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। इसका प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है, जब यह सड़क पर पड़ी पत्तियों को उड़ाती है तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। सोचिए तेज पवन में हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक काम करिएगा, इसमें बस इसको यहां तक रखिएगा कि तूफान के समय पेड़ों को उड़ा देती है। उसके बाद ये आंसर आपका आएगा, मुख्य रूप से पवन तीन प्रकार की होती हैं। तो ये क्वेश्चन वाला जो पार्ट है बीच में, इसको आपको स्किप कर देना है। चलिए तो अब इसमें जो इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि इसका आंसर है। पहला, स्थायी पवने, ये तीन प्रकार की होती हैं, व्यापारिक, पछुआ एवं ध्रुवीय पवने। ये वर्ष भर लगातार एक ही निश्चित दिशा में चलती है, इसलिए इन्हें स्थायी पवने कहते हैं। वायु दाब की पेटियां एवं स्थायी पवनों के रेखा चित्र में इनकी दिशा एवं क्षेत्र को देखा जा सकता है। दूसरा है, समायिक पवने या मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं मौसम में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं। तटीय प्रदेशों में रात्रि में चलने वाली स्थिर समीर तथा दिन में चलने वाले समुद्री समीर इसके अच्छे उदाहरण हैं। तीसरा हमारा आता है, स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। जैसे राजस्थान में गर्मी की ऋतु में चलने वाली गर्म पवन जिसे लू कहा जाता है। चिनुक, रॉकी पर्वत, फोहन एवं मिस्ट्रिल यूरोप आदि। विश्व में अन्य स्थानीय पवने हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा आ जाता है आंसर इसमें, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात वाले टॉपिक के नीचे। सामान्य रूप से चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों तरफ उच्च वायु दाब होता है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है, जिससे हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। सामान्यतः चक्रवात समुद्र पर विकसित होते हैं और तटीय भागों पर वर्षा करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एवं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात धीमी गति से चलते हैं, इसलिए इनसे जान माल का नुकसान कम होता है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत तीव्र गति से चलते हैं, जिनसे विश्व के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष भारी मात्रा में नुकसान होता है। अब इसका अगला पार्ट है जो आंसर का, वो है नेक्स्ट पेज पे, दैट मीन्स पेज नंबर 19, अंडर द हेडिंग प्रति चक्रवात। हवाओं के द्वारा निर्मित वृत्ताकार, अंडाकार आदि लहरनुमा आकार, जिसके मध्य में उच्च दबाव तथा परिधि की ओर न्यून वायु दाब होता है, प्रति चक्रवात कहलाता है। प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चक्राकार वलय में चलती हैं, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती हैं। प्रति चक्रवात में हवाओं के केंद्र से चारों ओर अपसारी होने के कारण प्रायः मौसम साफ रहता है तथा वर्षा नहीं होती है। प्रति चक्रवात मध्य अक्षांशों में पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्रवातों के पीछे पीछे चलते हैं। चलिए अब आ जाता है हमारा 7th क्वेश्चन, जो हमें मिलेगा पेज नंबर 11 पे, एंड द क्वेश्चन इज वायुमंडल के संगठन को समझाइए। सो कम टू पेज नंबर 11, और इसमें जो पहला हमारा पहले ही पेज है चैप्टर का, ये इसमें जो हेडिंग है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल अनेक गैसों, जल वाष्प एवं धूल कणों के मिश्रण से बना है। वायुमंडल की प्रमुख गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इनके अतिरिक्त वायुमंडल में हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन और मीथेन गैसें भी विद्यमान हैं। जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, जिससे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है। वर्तमान समय में अधिक जैविक ईंधनों के उपयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इसे भूमंडलीय तपन अथवा ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वायुमंडल का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व धूल कण है, जो वायुमंडल में इधर उधर उड़ते रहते हैं। इन धूल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा भी धूल कणों के कारण ही दिखाई देती है। संघनन में इनकी भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि इन्हीं पर जल की छोटी छोटी बूंदें जमकर बादलों का निर्माण करती है। इनके अभाव में संघनन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, एंड दैट इज वायुमंडल की परतों का चित्र बनाकर उनकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 12 पर, जिसमें चित्र भी बना हुआ है वायुमंडल का। तो ये आप सभी लोग याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आता है बनाने को। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि वायुमंडल की संरचना कैसे हुई, उसके बाद हम इसके अंदर के अलग अलग वायुमंडल के बारे में उसके पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले वायुमंडल को ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया जाता है। यह पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होकर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। आइए वायुमंडल की संरचना को एक चित्र की सहायता से समझते हैं। पहला, शोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। सभी मौसमी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, आंधी तूफान, तड़ित चालन, ओलावृष्टि, पाला आदि इसी परत से घटित होती है। इस परत की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ऑक्सीजन व अधिकांश भाग इसी परत पर पाया जाता है, जो वनस्पति सहित सभी जीवों की श्वसन क्रिया के लिए उपयोगी है। इसकी ऊपरी सीमा को शोभ सीमा कहा जाता है, जहां किसी भी प्रकार की मौसमी घटना घटित नहीं होती है, इसलिए इसे शांत मंडल भी कहा जाता है। देन कम्स समताप मंडल। शोभ सीमा के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल स्थित है। इसमें मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, इसलिए वायुयान इसी परत में उड़ते हैं। ओजोन गैस समताप मंडल में ही पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों मतलब अल्ट्रावायलेट रेज का अवशोषण कर धरातल तक नहीं आने देती है। इस प्रकार इन हानिकारक किरणों से ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहा जाता है। फिर आता है हमारा मध्य मंडल। समताप सीमा के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल नामक तीसरी परत स्थित है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहा जाता है। फिर आता है हमारा आयन मंडल। मध्य मंडल के बाद 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वायुमंडल की चौथी परत को आयन मंडल कहा जाता है। संचार की दृष्टि से यह परत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे इसी परत से परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती है। फिर आता है हमारा बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। यहाँ गैसें अत्यंत विरल होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। इस मंडल के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इसी आंसर के साथ हमारा चैप्टर तो खत्म होता है, लेकिन हम एक बार इसका ब्रीफ रिविजन जरूर करेंगे, ताकि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में अच्छे से चला जाए। देखिए, पता होता क्या है, सिविक्स और हिस्ट्री वगैरह का तो ऐसा रहता है कि कहानियों के तौर पर, हिस्ट्री कैसे हम पढ़ लेते हैं, कहानियों के तौर पर पढ़ लेते हैं, और जो सिविक्स है वो हमारी निजी जिंदगी के तौर पर हम पढ़ लेते हैं, जो चीजें हो रही हैं समाज में। लेकिन ज्योग्राफी के साथ ऐसा नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे बोर होते हैं। तो आई वॉन्ट यू ऑल की रिवाइज दिस ट्वाइस एंड थ्राइस, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिविजन करेंगे ना, उतना ज्यादा आप अभी सुनते सुनते ही चैप्टर को समझ लेंगे, ताकि फिर जब आप सेल्फ रिविजन करें, जब आप बैठें खुद से पढ़ने के लिए, तो आपको हर एक चीज याद आए कि मैंने आपको क्या क्या बताया था। चलिए, चैप्टर का नाम क्या था हमारा, वायुमंडल और जलवायु। अब वायुमंडल के बारे में हमने जाना था कि पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है। इसमें अलग अलग गैसें होती हैं, और लेंथ जो इसकी ऊपर तक है, ये इनको बढ़ते हुए टेम्परेचर के हिसाब से बांटा गया है, और कई कई किलोमीटर तक गई है ना। और बेल्ट, अलग अलग परतें बनी हुई है वायुमंडल के, एटमॉस्फेयर की अलग अलग परतें बनी हुई है। और पृथ्वी पर जो भी जीवन है वो वायुमंडल पे ही निर्भर करता है। हर एक चीज, मतलब हमें जो मिली, वायुमंडल अगर नहीं होगा तो फिर हमारे पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। फिर सेकेंड हमने पढ़ा था वायुमंडल का संगठन, मतलब एक वायुमंडल में या एक एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो बना हुआ है। तो वायुमंडल में क्या होता है, गैसेस होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं वो हमने यहाँ पर जानी। एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू कि सबसे ज्यादा कंटेंट जो होता है 78.08% वो नाइट्रोजन का होता है। सबसे ज्यादा मतलब वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन होती है, जो कि सभी के लिए यूज की जाती है, चाहे वो इंसान हो चाहे प्लांट्स हो। प्लांट्स मेनली इसको यूज करते हैं। और जब डीकम्पोजिशन होता है, किसी कोई चीज सड़ने लग जाती है, इसको डीकम्पोज करना होता है, जो छोटे छोटे ये तत्व होते हैं जो कि किसी भी बड़े विशालकाय जीव को डीकम्पोज करते हैं, तो वो नाइट्रोजन से ही करते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो हमारे एटमोसफेयर में पाई जाती है गैस, वो नाइट्रोजन है। फिर हमारा आता है 20.95% ऑक्सीजन का, क्योंकि इंसान हो या पशु पक्षी हो, हम सभी को ऑक्सीजन चाहिए, सिवाय पेड़ पौधों के। पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं लेते, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। आपको पता है, ऐसा बोला जाता है कि रात में ना कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब वो लोगों ने खैर उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से मिथ बना दिए हैं, मतलब एक अफवाह बना दी है कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत पकड़ लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि रात के समय क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो हम अगर पेड़ के नीचे सोएंगे, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना, वहां के पेड़ के नीचे के जितना भी एरिया होगा पूरा पेड़ के आसपास का, वहां तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सो दैट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। और आप सब सोचेंगे कि अगर रात में पेड़ ऑक्सीजन छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू करता है तो फिर हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है? हमें मिलती है दिन भर में जो ऑक्सीजन हमारे पेड़ पौधों ने रिलीज किया है वो एटमॉस्फेयर में रहती है, कहीं जाएगी थोड़ी, वहीं रहेगी, तो उससे हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। लेकिन रात में ये फैक्ट है उस बात का कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। चलिए, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हमने जान लिया इसमें, फिर जो कुछ परसेंटेज जो है गैसेस के हैं जो कि पाई जाती हैं, फिर ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस जानने के बाद हमने इसमें पढ़ा वायुमंडल की संरचना की हुआ कैसे है और इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है शोभ मंडल। शोभ मंडल वो है जिसमें हमारा पूरा सारी मौसम वाली गतिविधियां होती हैं, सारे जीव जंतु को जो ऑक्सीजन मिलता है, मतलब हमारे जो प्रॉपर लिविंग बींग्स जो हैं अर्थ के वो डिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए जितनी भी गैसेस होती हैं जो उनके लाइवलीहुड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो शोभ मंडल में पाई जाती हैं। फिर आता है हमारा संपताप मंडल, जो कि शांत मंडल भी कहा जाता है। शोभ मंडल जो हमारा होता है वो धरती से लेके ऊपर आसमान में 13 किलोमीटर तक होता है और उसके बाद एक सीमा होती है जिसे कहा जाता है शोभ सीमा, उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल होता है जिसे शांत मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधियां नहीं होती है और इसी मंडल में हमारा वायुयान उड़ता है। फिर इसके ऊपर जो सीमा है उसे कहा जाता है समताप सीमा। फिर आता है हमारा मध्य मंडल, जो कि समताप सीमा से लेकर 80 किलोमीटर ऊपर तक होता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की तीसरी परत होती है और इसकी ऊपरी सीमा को कहा जाता है मध्य सीमा। जितने भी अंतरिक्ष से जो भी एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइड्स वाले जो वो छोटे छोटे कण आते हैं ना, वो इसी परत में जाकर जल जाते हैं। फिर जो अगला मंडल हमारा है वो है आयन मंडल। तो आयन मंडल जो है वो मध्य सीमा के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, जो कि चौथी परत होती है हमारे वायुमंडल की, ये हमने पढ़ा था। और जो हमारी रेडियो जो वेव्स है ना, रेडियो इंफ्रारेड वेव्स होती है, ये इसी परत से टकरा के वापस आती है, इसी से हमें सिग्नल मिलते हैं, हमें सैटेलाइट्स वगैरह। फिर आता है हमारा आखिरी परत जो होती है, सबसे ऊपरी परत, बर्हिम मंडल। बर्हिम मंडल में सारी गैसें होती हैं जो कि बहुत ही मतलब एक्सट्रीम होती हैं, लेकिन इस मंडल के बारे में हम ज्यादा कुछ पता नहीं लगा सकते क्योंकि ना हम उस मंडल तक पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं का मतलब ये नहीं, देखिए हम स्पेसक्राफ्ट से जाते हैं स्पेस में, लेकिन हम उस मंडल में रुककर देख नहीं सकते ना, वहां पर परीक्षण नहीं किया जा सकता। ये बाकी की जो परत है, बाकी की जो परतें हैं इसकी, इसमें हम जाकर देख सकते हैं मतलब कि इस परत में ये चीजें होती हैं। फिर हमने पढ़ा था मौसम तथा जलवायु, कि मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। देखिए, जो कुछ समय के लिए होता है वो मौसम होता है और जो बहुत सालों के लिए होता है उसे जलवायु कहते हैं। मौसम में जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, इसलिए हमें समझ में आते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, है ना। तो ये सारे जितने भी चेंजेस होते हैं मौसम, जो ऋतुएं होती है वो हमें समझ में आती है। लेकिन जलवायु में भी परिवर्तन होता है, लेकिन वो इतना धीमा होता है कि हमें समझ में नहीं आता। मतलब जलवायु मतलब क्लाइमेट और मौसम मतलब वेदर। फिर हमने उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है वो सब पढ़ा, तो जिसमें हमने जाना कि तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, पवने, ये सारी मौसम के और जलवायु के तत्व होते हैं, कॉम्पोनेंट होते हैं। फिर हमने तापमान के बारे में जाना कि जो गर्म हवा, जिसको बहुत ज्यादा गर्म हवा होती है वो बहुत पतली होती है और ऊपर उठ जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं उससे, और जो ठंडी हवा होती है वो वहीं रह जाती है। फिर ठंडी से गर्म हवा मतलब भारी जो वायुदाब है उससे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ हमेशा हवा उड़ती है, लैंड और सी ब्रीज जिसमें आता है, ये आगे पढ़ेंगे, बट मैंने आपको इसमें भी एक बार बताया था। फिर उसके बाद और हमने जाना था कि जो टेम्परेचर नापने की स्टैंडर्ड यूनिट है वो इक्विपमेंट होता है तापमान नापने का, उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। फिर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुदाब के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना कि जो हमारे अर्थ के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो हम पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। वो प्रेशर इतना नहीं होता है कि हम मतलब हमें फील हो, और हमारी बॉडी भी उसको एग्जर्ट करती है, एक प्रेशर अपोज करती है, वो भी हमें फील नहीं होता, वो प्रेशर बहुत ही माइन्यूट सा होता है। और जैसे जैसे और क्या होता है कि मतलब जैसे जैसे ऊंचाइयां जाती जाती है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि जितनी ऊंचाइयों पे हम जाते जाएंगे वहां पर हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो सब कुछ कम होने लग जाता है। पर्वतों पर एकदम ऊंचे मतलब जहां बादल दिखने लग जाते हैं हमें, उतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होने लग जाता है, क्योंकि हम अपने शोभ मंडल से ऊपर पहुंचने लग जाते हैं। फिर चलिए, हमने उसके बाद पढ़ा था पवन। पवन में भी हमने पढ़ी थी कि कितने तरीके की पवन होती है। पहली होती है स्थायी पवनें, जो कि एक ही दिशा में कई सालों से बहती आ रही हैं या उड़ती आ रही हैं। फिर होती हैं मौसमी पवनें, जैसे मानसून के टाइम पर जो आती है हमारे में, और जो सी ब्रीज या लैंड ब्रीज होती है। फिर हमने तीसरी पढ़ी थी स्थानीय पवनें, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उस हवा को क्या बोला जाता है। जैसे राजस्थान में गर्मियों के टाइम पर जो हवा चलती है उसको लू बोला जाता है। फिर हमने पढ़ा था आर्द्रता के बारे में, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वाटर वेपर होती है, वो कैसे प्रेजेंट होती है एयर में। और हमने ये जाना था कि सिर्फ जो इवेपोरेशन है उससे क्या होता है, जो जितने भी इवेपोरेशन मतलब आर्द्रता के माध्यम से क्या होता है, जो सागर का, महासागर का जो खारा पानी होता है वो इवेपोरेट होकर भाप बनकर ऊपर उड़ के चला जाता है, और वर्षा के रूप में जब वो हमें मिलता है तो वो मीठे पानी के रूप में मिलता है। फिर हमने जाना वर्षा। वर्षा में हमने यही जाना कि तीन प्रकार की वर्षा होती हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवर्तीय वर्षा। वर्षा में भी अलग अलग क्षेत्रों में कैसे वो मॉनसून विंड्स जो होती हैं वो फ्लो करती हैं, तो उसके साथ साथ वर्षा होती है। फिर अलग अलग हमने कॉम्पोनेंट्स देखे कि कहाँ कहाँ कर वर्षा का क्या क्या वितरण है। विश्व में देखा अलग अलग जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बेसिस पर कहाँ कितनी बारिश होती है। फिर हमने भारत के बारे में जाना था कि भारत इस पिक्चर के थ्रू कि भारत में किस एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और हमने देखा था जो ईस्ट साइड सबसे ज्यादा बारिश होती है। मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस तरफ होती है, तो ईस्ट की तरफ होती है सबसे ज्यादा बारिश। फिर हमने समुद्र व जंगलों का जलवायु पर प्रभाव पढ़ा था। इसमें हमने ये जाना था कि जिस प्रकार पानी से, मतलब समुद्र का पानी इवेपोरेट भाप बनकर ऊपर उड़कर जाता है और ठंडा होकर बादल बन जाते हैं, फिर जो वर्षा करते हैं, उसी प्रकार जो घने जंगल जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर पानी जो होता है, सूर्य की गर्मी से जो पानी पेड़ पौधों से खिंचता है, ट्रांसपिरेशन जिसे कहते हैं होता है, उससे भी बारिश अच्छी होती है। तो इससे हम ये जानते हैं कि जहां पर या तो जलदीय स्थल जो है बहुत ज्यादा है, तालाब वगैरह है वहां पर, या समुद्र वगैरह है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, और या तो जो हरियाली वाला क्षेत्र है बहुत ज्यादा वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे कम बारिश होती है ऐसे जगह पर ना तो जहां जलीय क्षेत्र हो और ना ही वहां पर पेड़ पौधे या हरियाली हो। फिर हमने जाना था चक्रवात एवं प्रति चक्रवात के बारे में, कि ये जो टॉर्नेडो, हरिकेन और ये जो चक्रवात आते हैं ये होते क्या है और इनसे क्या होता है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक जो जिसमें ज्यादा प्रेशर रहता है उसमें क्या होता है, जो शांत मतलब जो उत्तेजित होता है उससे क्या होता है कि सालों हर साल मतलब ये आता है और सुनामी की तरह आता है, सुनामी बोल सकते हैं, इसकी वजह से सुनामी आ जाती है। और जो समुद्र के आसपास के इलाके होते हैं वो बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट होते हैं और जान मान की बहुत हानि होती है। जो दूसरे होते हैं, जो दूसरी शांत चक्रवात आते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है, जान मान की हानि नहीं होती, बल्कि वो कुछ मिनरल्स लेकर आते हैं अपने साथ जब वो समुद्र में से आते हैं। फिर हमने टॉर्नेडो के बारे में भी पढ़ा था और प्रति चक्रवात के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो सेंटर पॉइंट होता है वो ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉन्टैक्ट में रहता है और जो आउटर पार्ट होता है वो नहीं होता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब इसकी जो ग्लॉसरीज वगैरह है वो आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। देखिए होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइजेस और ये जो एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स होती, इनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ये सोचते हैं कि अरे ये तो हमें ध्यान आ ही जाएगा। लेकिन ये ध्यान तब आएगा जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो या आप इसको अच्छे से एक बार पढ़कर जाएं। बच्चे क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं, बस क्वेश्चन आंसर्स करके चले जाते हैं, तो उनके एक्सरसाइजेस में मार्क्स चले जाते हैं। तो आपको एक्सरसाइजेस भी बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपके पेपर अच्छे निकलें। चलिए आज की क्लास यहीं तक थी, अब नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जल।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।